તારીખ 19/9/1997 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 32.
મોક્ષ માર્ગ કે કારણભૂત मोक्ष मार्ग के कारण भूत सच्ची मुमुक्षुता का स्वरूप चलता है
जी।
श्रीमद जी ने अपने अनुभव से इस विषय में बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिया है
जी।
कि कौन सी मुमुक्षुता यानी किस प्रकार की मुमुक्षुता सच्ची मुमुक्षुता है और ये मोक्ष मार्ग के कारणभूत मुमुक्षुता है
जी।
जिस मुमुक्षुता में दर्शन मोह का अनुभाग टूटता जाता है
जी।
जैसा जैसा मुमुक्षु आगे बढ़ता है वैसा वैसा उनका दर्शन मोह टूटता जाता है और दर्शन मोह का अनुभाग कम होने से उसकी ताकत कम होने से वो उपशम के योग्य होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहला उपशम सम्यक दर्शन होता है। सूक्ष्म रक्षा एक बाद में होता है। बलवान ऐसा दर्शन मोह का अनुभाग कम होने से तो उपशम के योग्य होता है यही इसका विज्ञान है। तो इस प्रकार की पात्रता में दर्शन मोह पर प्रहार होता है हर वक्त
जी।
और उसकी शक्ति कम होते होते कमजोर होता हुआ तो उपशम के योग्य होगा
जी।
मुमुक्षुता में सबसे पहला सबसे प्रथम संसार की उपासना का अभिप्राय मिटता है ये इसकी पहली भूमिका है और एक केवल आत्मकल्याण संपूर्ण आत्मकल्याण करने का अभिप्राय बनता है। कल हमारी चर्चा में पदम सिंह जी सामने लगे हैं एक बात चली थी
पदम सिंह जी
कि निर्दोष परमात्मा को जाने बिना दोष को जानेंगे कैसे
जी।
क्योंकि इस पेज का विषय चल रहा था। श्रीमद जी ने ऐसा कहा कि मुमुक्षुता उत्पन्न होते ही उसका एक लक्षण पैदा होता है उस लक्षण में मुमुक्षु जीव अपना दोष और पक्षपात रूप से देखता है। तो श्रीमद जी को मालूम है कि उन्होंने आत्मा तो देखा नहीं है निर्दोष परमात्मा को तो नहीं जाना है फिर भी ये बात लिखी है तो अनुभव से तो लिखी है मानना चाहिए मानना चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए। बाद में हमें थोड़ा विचार चला कि हम एक तर्क लड़ा लेते हैं कि निर्दोष परमात्मा को जाने बिना दोष को कैसे जानना हो सकता है। इस विषय में हम लोग प्रयास करते हैं गहराई में जाए बिना जो तर्क आता है ये ज्ञानी की बात का निषेध करता है। ये तर्क ये तो ज्ञानी की बात है ज्ञानी कह रहे हैं हमको जो तर्क आता है तो उसका अस्वीकार होने से आता है। तर्क के सामने एक और तर्क देते हैं कि आपने आत्मा के सच्चे सुख को जाना नहीं
जी,
फिर भी दुख को क्यों जानते हैं
जी,
कैसे जानते हैं बताइए। हाँ, ये प्रैक्टिकल साइड है कि सच्चे सुख को अनुभव में नहीं लिया है दुख को जानते हैं कि नहीं जानते हैं,
जानते ही नहीं।
तो बिना सुख दुख कैसे जाना, बिना सुख को जाने कैसे जाना, तो होता है नारकी जीवों को कभी संगीत दर्शन होता है, नरक के जीवों को कभी संगीत दर्शन किस प्रकार से होता है कि नरक की जो दुख रूप वेदना है ना
जी,
तो वेदना के निमित्त से संगीत दर्शन होता है, शास्त्र में आता है
जी।
वेदना के निमित्त से संगीत दर्शन होता है, तो वहां तो सुख को देखा नहीं। इसका मतलब ये है कि मोक्षु अगर चाहे तो अपना दोष को और पक्षपात रूप से देख सकता है, और वो कौन देख सकता है कि जिसको सच्ची मोक्षुता उत्पन्न हुई हो वो देख सकता है, यानी जिसको एक मोक्ष के लिए ही प्रयास करना है उस प्रयास की शुरुआत ही यहाँ से होती है
जी।
दोष को जाने नहीं और दोष का अभाव हो गए ये तो कभी संभव ही नहीं है, असंभव बात है,
बराबर
बन ही नहीं सकता। तो ये प्रक्रिया जो चालू होती है दृढ़ मुमुक्षुता उत्पन्न होने के बाद, जब अपक्षपात रूप से अपना दोष देखने का प्रैक्टिस चालू होता है, यह प्रैक्टिस है स्वच्छंद दबता है
जी।
परिभ्रमण के परिणाम का मुख्य दो कारण दिया गया है ज्ञानियों ने, एक स्वच्छंद और एक प्रतिबंध। स्वच्छंद माने मन अपनी मनमानी कार्य पद्धति से आत्मकल्याण करने का प्रयास, उसको कहते हैं स्वच्छंद। ज्ञानी की आज्ञा अनुसार नहीं किंतु अपनी मनमानी करना, धर्म साधन अपनी मनमानी पद्धति से करना, ये स्वच्छंद है। और प्रतिबंध चार प्रकार का है, समाज प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, शरीर प्रतिबंध और संकल्प विकल्प प्रतिबंध। प्रतिबंध मैंने जहाँ आत्मा रुकता है अपने कल्याण को गौण करके, जैसे बहुभाग लोग ऐसे विचार करते हैं कि हमको समाज के बीच में रहना है, इसलिए समाज चाहेगी वैसा ही हमको धार्मिक क्षेत्र में भी वर्तन करना होगा, परिवर्तन करना होगा। क्योंकि हमें समाज के बीच में रहना है
जी।
समाज को, समाज की रीति नीति को और समाज की दृष्टि को मुख्य करके अपने आत्मकल्याण को गौण करना
जी,
ये समाज प्रतिबंध है। तो सबसे पहले जाना चाहिए। दूसरा प्रतिबंध है कुटुंब का। कुटुंब वाले नाराज हो गए, ऐसा नहीं करना। आत्मकल्याण भी करना है और कुटुंबियों को राजी भी रखना है, दो बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि कुटुंब के जितने भी सदस्य हैं वो संसारी है
जी,
और हम मोक्ष मार्ग के मोक्षार्थी हुए हैं, मोक्ष अभिलाषा वाले हैं, हमारा रास्ता विरुद्ध है। संसार मार्ग से हमारा मार्ग विरुद्ध है
जी।
तो संसार में से पटने वाले तो
नहीं
है। तो जो संसारियों को राजी रख करके, खुश रख करके, नाराज नहीं होने देने का अभिप्राय रखता है, तो कभी आत्महित नहीं कर सकता, आत्मकल्याण वो
नहीं
कर सकता। इतनी बात जरूर है कि हम जिसके साथ रहते हैं वो ऐसे कुटुंब को समझाने का प्रयास करें। अगर वो समझे और हमारे मार्ग में चलने के लिए वो साथ दे, अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होवे तो भी, नहीं होवे तो भी, हमें इसको गौर करके हमारे आत्मकल्याण के मार्ग से विचलित नहीं होना है। मक्कमता से, दृढ़ता से और धीरज से हमें अपने मार्ग में चलना है। इस तरह से कुटुंब प्रतिबंध को भी गौण करना चाहिए और शरीर प्रतिबंध को भी गौण करना चाहिए। शरीर की असाता को मुख्य करके या सातावश प्रमाद को धारण करके हमें आत्मकल्याण की प्रवृत्ति को कभी गौण नहीं करनी चाहिए। अगर हम करते हैं साता साता को मुख्य करके, तो ये शरीर प्रतिबंध है, ये आत्मकल्याण को होने नहीं देगा।
बराबर।
संकल्प विकल्प प्रतिबंध तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है। मुख्य रूप से उसके जो मुद्दे हैं वो दो हैं। एक तो अभिप्राय की अनेक प्रकार की विपरीतता होने से, विपरीत अभिप्रायों के कारण से अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प बने रहते हैं, समाधान नहीं हो पाता, तो वहां जीव अटक जाता है। ये संकल्प विकल्प प्रतिबंध है
जी।
और मूल में मोक्ष का ध्येय निश्चित नहीं किया, निर्धारित नहीं किया, इसलिए ध्येय शून्य धार्मिक प्रवृत्ति होती है या शास्त्रादि का स्वाध्याय होता है, सूक्ष्म ज्ञान बढ़ता है, साथ साथ संकल्प विकल्प भी बढ़ जाता है। ये प्रतिबंध है, यह आत्मकल्याण को रुकने वाली बात है
जी।
तो उसको भी छोड़नी चाहिए। ये चारों प्रकार के प्रतिबंध और स्वच्छंद जीव को परिभ्रमण का, जन्म मरण का कारण बनता है। ज्ञानियों ने उसका अभाव करने का रास्ता दिखाया है। तो यहाँ स्वच्छंद की बात की है कि स्वच्छंद कैसे दबेगा, स्वच्छंद कैसे हानि को प्राप्त होगा, स्वच्छंद की हानि कैसे होती है। तो जो अपना दोष को निष्पक्ष रूप से, अपक्षपात रूप से देखता है, उसका स्वच्छंद दबेगा। और उसका स्वच्छंद जितना दबेगा, उतना उनको आत्म कल्याण का बोध है तो असर करेगा। देखिए, जीव को स्वयं के कल्याण का बोध की का असर भी क्यों नहीं होता, यही कारण है कि दर्शन तीव्र हो जाता है तब बोध की असर नहीं पहुंचते
जी।
इसलिए दर्शनों का अनुभव कम करने की हमारी कार्य पद्धति अवश्य अवश्य होनी चाहिए और इस कार्य पद्धति का मुख्य रूप है अनुभव पद्धति
जी।
स्वानुभव अनुभव प्रधान है, स्वानुभव में अनुभव की प्रधानता है, तो स्वानुभव का मार्ग जो मोक्ष मार्ग है उसमें पहुंचने का भी प्रधान रूप अनुभव का होना जरूरी है।
बराबर।
हम लोग इस पहलू को नहीं समझने के कारण से बौद्धिक स्तर पे आगे बढ़ते रहते हैं, बहुत विचार करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, सुनते भी बहुत हैं, चर्चा भी बहुत करते हैं
जी,
लेकिन अनुभव पद्धति में नहीं आते हैं। परिभ्रमण की चिंतना जो वेदना को धारण करती है ये अनुभव पद्धति का प्रथम चरण है। क्या है
प्रथम चरण?
ये प्रथम चरण है, पहली सीढ़ी है जहां हम पैर रखना चाहते हैं, वही वेदन प्रधान है। चिंतना में विचार अवश्य है किंतु वेदना मुख्य है और उस वेदना के वशात जो उदासीनता आई उसमें भी उदासीनता वो वैचारिक परिस्थिति नहीं है, तो एक वेदना के फलश्रुति है कि जिसके कारण से उदासीनता आई है, तो इसमें भी वेदक प्रधानता है, विचार प्रधानता नहीं है किंतु वेदन प्रधानता है। वैसे ही आगे जाकर के जो अपना दोष निष्पक्ष रूप से देखने की भूमिका आई मुमुक्षुता में, उसमें भी दोष में क्या वेदन होता है वो हमको देखना है
जी।
पर किस अभिप्राय से होता है, इसमें रस का वेदन कितना है वो हमें देखना है
जी।
दूषित परिणाम की ताकत, विभाव परिणाम की ताकत विभाव रस में है, पर अपक्षपात रूप से देखने से रस उसी वक्त टूटता जाता है। मतलब विभाव की ताकत उसी वक्त टूटती जाती है। दोषित परिणामों को कमजोर करने का ये रामबाण उपाय है
जी।
कैसा उपाय है?
रामबाण
उपाय जो कभी निष्फल नहीं जाता, आप प्रयोग करके देख लीजिए कभी भी। जिस वक्त आपका किसी भी विभाव का रस तेज हुआ हो और उसको देखने की आपको जागृति आई, रस का पारा उससे डाउन हो जाएगा
जी।
आपको आपके प्रयास की सफलता की प्रतीति उसी वक्त हो जाएगी, जैसे मुनाफा हार्ड कैश में होता है तो पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास जो पैसे थे तो बढ़ गए हैं
जी।
ये ऐसी एक चीज है, बहुत ठोस चीज है ये। पर यही प्रैक्टिस जितनी चालू रही उतनी विभाव भावों की पहचान और साथ साथ ज्ञान अपने आप का अवलोकन करने से स्वभाव भाव के पहचान आने लगेगी। ये पहचान आने से दो भाव का जो अंतर है, तफावत है, जो गाथा सुबह चल रही है अपने कर्ता कर्माधिकार की प्रारंभ की गाथा, कि आत्मा और अनात्मा का विशेष भेद जहाँ तक नहीं जानने में आता है वहाँ तक अज्ञानीपना मिटता नहीं। तो भेद कहाँ से जानने में आएगा
जी।
कि हमारी नजर पर पदार्थों से हट करके हमारे परिणाम में जो स्वभाव और विभाव दोनों प्रकार के परिणाम चल रहे हैं उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, उसको अनुभव से परिचय करेंगे, तभी पता चलेगा कि दोनों की जाति अलग अलग है
जी।
जाति की पहचान होने से एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि पहचान वालों को कभी भ्रम नहीं होता। ये पहचान का सबसे बड़ा फायदा है। वरना क्या होता है कि धर्म के क्षेत्र में आने वाला जीव कषाय की मंदता को प्राप्त करता है
जी।
तो मंदता के कारण से कुछ मानसिक शांति साता वेदनी का उदय भी रहता है
जी।
पर उसमें भी कुछ लोग ध्यान करने लगते हैं, ध्यान में बैठते हैं एकांत स्थान में, तो उनको अधिक मानसिक शांति होने से ये भ्रम पैदा होता है कि हमको आत्म शांति या आत्मा का आनंद की उत्पत्ति हुई और हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। क्योंकि जब सम्यक दर्शन होता है तब आत्मा का आनंद भी अवश्य अवश्य साथ में होता ही है, अपूर्व आनंद। ये अपूर्व शांति और अपूर्व आनंद का अनुभव मानने लग जाते हैं
जी।
बिना सम्यक दर्शन और ज्ञान दिशा पाए बिना ये भ्रांति में भी कहीं लोग आ जाते हैं
जी।
इसलिए ज्ञानियों ने ये क्रम बताया है कि आप इस क्रम से आगे बढ़ो, आपको मानसिक शांति अवश्य होगी लेकिन इसका भ्रम नहीं होगा। क्यों भ्रम नहीं होगा? कि आपको विभाव जाति क्या है और स्वभाव जाति क्या है वो अवलोकन से पता लगने लगता है। इसलिए आपको ये भ्रम होने वाला नहीं है, क्योंकि भेद ज्ञान में विभाव का निषेध है
जी।
और मानसिक शांति भी एक प्रकार का विभाव है, तो स्वभाव नहीं है। तो विभाव कभी भेष बदल करके सामने आ गया मानसिक शांति के रूप में तो भी आपको भ्रांति नहीं होगी कि मुझे आत्मा की शांति मिल गई।
उस काल में वो उस विभाव को स्पष्ट जान पाएगा?
हाँ, स्पष्ट जान पाए। ये तो अवलोकन का फायदा ही वही है। अवलोकन से वह तो फायदा होता है। ज्ञान और राग दोनों को एक साथ अवलोकन करके कषाय का सद्भाव और कषाय का अभाव की पहचान होती है दोनों परिणामों में। तो मानसिक शांति भी सकषाय परिणाम है
जी।
पर मात्र ज्ञान है वो अकषाय परिणाम है।
बराबर।
इसलिए आत्मा ज्ञान मात्र है ऐसा समय सार में बोला है। मात्र ज्ञान, अकेला ज्ञान, भिन्न ज्ञान वही आत्मा है
जी।
जिसमें कषाय का हमेशा हमेशा अभाव है। अज्ञानी का ज्ञान भी कषाय रूप कभी हुआ नहीं, ज्ञानी को तो भिन्न अनुभव रहता है, अज्ञानी को अभिन्न अनुभव रहता है
जी।
फिर भी इसका ज्ञान और कषाय कभी एक हुआ
नहीं,
नहीं है। दूध में पानी मिलाने से पानी का दूध कभी होता नहीं, बताइए क्या
जी? नहीं।
पानी हमेशा पानी ही रहेगा और पानी ही रहता है
जी।
इसलिए दूध में पानी डाल करके दूध बढ़ गया ऐसा कोई मानता है तो भ्रम है। दूध बड़ा नहीं है, दूध उतना का उतना है और पानी पानी ही है
जी।
वैसे राग से एकत्व करने वाला, तन्मयता करने वाला, एक रूप अनुभव करने वाला का ज्ञान भी राग रूप कभी हुआ नहीं और होता भी नहीं। लेकिन भिन्न को भिन्न रूप से अनुभव कैसे करे ये एक बहुत बड़ी समस्या है
जी।
इसलिए वो समस्या है कि एक समय की पर्याय में दोनों साथ होने से अति निकट है
जी।
दूसरा ज्ञान में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, ज्ञान झेलता है उसके प्रतिबिंब को, पर तीसरा अपना भिन्न बना जाना नहीं, अनुभव किया नहीं और उसे और का कोई प्रयास नहीं, पर अपने ज्ञान जाति का स्वभाव को पहचाना भी नहीं, कभी उसको अकेला देखने का प्रयास नहीं किया कि मात्र ज्ञान क्या चीज है।
बराबर।
क्यों? कि दोष को देखने में नहीं आया, वो ज्ञान को देखने में आएगा कहां से? अभी तो दोष को देखने में नहीं आया। और बहुभाग शास्त्र पाठी को तो ये पद्धति ही नहीं बैठती, जो सच्ची मुमुक्षुता में अनिवार्य है होनी ही चाहिए, इसके बिना भेद ज्ञान हो ही नहीं सकता और बिना भेद ज्ञान अनुभव हो ही नहीं सकता। तो ये एक अनुभव पद्धति की प्रक्रिया है, प्रैक्टिस है, जो स्वच्छंद को हानि पहुंचाने के कारण रूप है और दर्शनों को कमजोर करती है और मुमुक्षुता को वर्धमान करती है
जी।
अब लिखते हैं कि स्वच्छंद जहां थोड़ी बहुत हानि को प्राप्त हुआ उतनी बोध बीज योग्य भूमिका हुई और स्वच्छंद अधिक प्रमाण में हानि को प्राप्त होने से इसके बाद मार्ग प्राप्ति के रोकने वाले, मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उत्पन्न होने में रोकने वाले त्रण प्रकार के परिणाम मुख्य रूप से होते हैं ऐसा हम जानते हैं
जी।
अब जो मुमुक्षु आगे बढ़ा है उनको भी तीन प्रकार के दूषित परिणाम हैं, दोष हैं, तो मार्ग प्राप्ति में अवरोधक होते हैं, बाधक होते हैं। ये तीन कौन कौन है कि पहले तो इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा एक कारण। दूसरा ज्ञानी के प्रति परम दैन्यपना यानी विनय की कमी, और तीसरा अपने स्वरूप की पहचान नहीं होना, मैंने अनिर्णय। ये तीन प्रकार का दोष जहां तक रहता है वहां तक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र उत्पन्न होता नहीं है, स्पष्ट बात किया है
जी।
किसको ये अवलोकन में आया है बाद में उनकी भूमिका वाले की बात है ये
जी।
तो कहते हैं कि ये तीनों कारण मिटाने का बीज मूल से आगे बीज बीज भूत कारण हम बाद में कहेंगे, इसके पहले वही कारणों को अधिकता से कहते हैं, मैंने उस कारण के कारण को समझाते हैं ये दोष किस प्रकार का होता है। पहला कारण है इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा। क्या है अभिप्राय उसमें? यह इस प्रकार का दोष अभिप्राय प्रधानता से होता रहता है। उस दूषित अभिप्राय को शास्त्रकारों ने सुख बुद्धि और अभिप्राय अनादि से बना हुआ रहा है कि इसमें सुख है। जैसे हम रसना इंद्रिय की बात करें तो मुख्य रूप से मीठापन है और बहुभाग लोगों को सुख का कारण दिखता है
जी।
वास्तविकता वो है कि एक भी पुद्गल परमाणु में सुख की पर्याय भी नहीं, सुख का गुण भी नहीं, सुख रूप वस्तु भी नहीं, द्रव्य गुण पर्याय तीनों नहीं, और सुख उत्पन्न होने का कोई निमित्त तत्व भी नहीं
जी।
धर्म भी नहीं किसके वो सुख दे सके
जी।
फिर भी मिथ्या भ्रांति से गलत अभिप्राय बना रहता है कि इसमें सुख है
जी।
इसमें सुख है, और इस सुख बुद्धि के कारण से सुखेच्छा के उत्पन्न सुखेच्छा के सुख की इच्छा के परिणाम उत्पन्न होता ही रहता है, बंद नहीं होता। जड़ पदार्थ में सुख की इच्छा उत्पन्न होना दो प्रकार से होता है, एक अभिप्राय की प्रधानता से अभिप्राय के कारण से, और एक पूर्व संस्कार के कारण से अभिप्राय विरुद्ध प्रकृति जन्य प्रकृति के उदय में जुड़ करके दो प्रकार से होते हैं। यहाँ पहला प्रकार की बात है कि मुमुक्षु जीव को सुख बुद्धि जहां तक रहती है जड़ पदार्थ में, वहां तक उसको आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, ये अवरोधक कारण है
जी।
क्यों? के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न होने के पहले स्वरूप सुख का निर्णय होता है कि आत्मा स्वयं परमानंद रूप है। आत्मा त्रिकाल परमानंद रूप है, ऐसा निर्णय होने से सुख बुद्धि का अभाव हो जाता है, और ऐसा निर्णय के अभाव में सुख बुद्धि होने के कारण से सुखेच्छा बार बार उत्पन्न होती है, और यह सुखेच्छा जीव को मार्ग प्राप्ति में अवरोधक बनती है। ये पहला कारण है। तो क्या कहा? बहुत करके तीव्र मुमुक्षुता के उत्पत्ति होने के पहले, मैंने स्वरूप का पहचान होने के पहले या ज्ञान दशा के पहले इस प्रकार की दूषित परिस्थिति होती है। यह होने का कारण यह है कि निशंक रूप से आत्मा सत है, शाश्वत है, तो दृढ़ नहीं हुआ है। मैंने आधार बुद्धि अपने स्वरूप की होनी चाहिए, तो नहीं है आधार बुद्धि संयोग की रही
जी।
अथवा आत्मा परमानंद रूप ही है ऐसा भी निश्चय नहीं है, अथवा तो मुमुक्षुता में भी कितना आनंद अनुभव में आता है, सता मानसिक सता, उसके कारण से बाह्य सता के कारण रूप जो संयोग है, अनुकूल संयोग, वह भी कभी कभी प्रिय लगने लगता है, अच्छा लगता है, पर इस कारण से इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा रहा करती है, जिससे जीव की योग्यता रुक जाती है। क्या कहा?
योग्यता रुक जाती है इस कारण से।
मुमुक्षुता में आगे बढ़ने की जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता वहां रुक जाती है। ये पहला दोष है। इसलिए अवलोकन के प्रयोग के काल में जब जब सुख का अनुभव होवे तब तब हमें अवलोकन करना है कि हमारा अभिप्राय वहां है या नहीं है। एक गलत अभिप्राय है हमारा। प्रत्यक्ष तौर से किसी भी परमाणु में सुख देखा नहीं जाता, फिर भी मेरा अभिप्राय ऐसा क्यों है और मेरे परिणाम ऐसे क्यों है? इसका निषेध जब जब अवलोकन से उसी वक्त होगा ये अभिप्राय बदलने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। पर जब ये अभिप्राय मिटने की परिस्थिति आएगी, आत्मा सब परमानंद रूप है, ये निश्चय हो जाएगा, ये पहचान हो जाएगी। इसलिए एक ऐसा योग्यता को रोकने वाला, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति को रोकने वाला एक ऐसा दोष है जिसके लिए कड़ा पुरुषार्थ चाहिए
जी।
कैसा पुरुषार्थ चाहिए? कड़ा पुरुषार्थ चाहिए। क्यों? कि हमारी परिस्थिति उदय की ऐसी है, आठों कर्म का उदय हमें निरंतर चालू है
जी।
और साता असाता दोनों में से एक तो रहेगा रहेगा और रहेगा, क्योंकि वेदनी कर्म का उदय चालू है, निरंतर चालू है। हमें हमारे परिणाम को और अभिप्राय को देख करके, समझ करके उसकी ताकत को तोड़ना है, उसके रस को तोड़ना है और सही अभिप्राय में आना है
जी।
तभी हमारी मुमुक्षुता वर्धमान होगी। इस प्रक्रिया से, इस प्रयास से, इस परिणाम से मुमुक्षुता बढ़ेगी। ये मुमुक्षुता बढ़े बिना आगे की कोई परिस्थिति संभव
नहीं
है ही नहीं।
बराबर।
ये विषय प्रयोग का होने से और अनुभव का होने से सिर्फ हमें सुन करके और विचार करके नहीं समझना है, हमें प्रयोग करके समझना है।
बराबर।
इसके बिना इस पहलू का, इस बात का सही मर्म समझ में नहीं आएगा
जी।
अगर हमें मुमुक्षुता के मर्म तक पहुंचना है कि सच्ची मुमुक्षुता कैसे होती है, तो हमें हमारे परिणामों का अवलोकन करके हमारी जो सुखेच्छा है इसके पीछे जो अभिप्राय खड़ा है उसको हमें तोड़ना है। और ये अवलोकन से ही टूटेगा, दूसरा कोई उसमें उपाय है ही नहीं। ये बात ज्ञानी पुरुष ने अपने अनुभव के निचोड़ रूप से कही है। हमें चाहे हमें इस पद्धति में नहीं आए हो सकता है कि हमारी ये पद्धति नहीं हो, परंतु ज्ञानी पुरुष की बात को आज्ञा समझ करके हमें इस पद्धति का की शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम प्रयोग करेंगे ही नहीं तो इस बात की समझ कभी होने वाली है ही नहीं, और हमारी गलत पद्धति कभी मिटने वाली नहीं है ही नहीं। ये बात बनेगी। खास करके प्रयोग नहीं होने का कारण यह है कि हम प्रयोग पद्धति में शुरुआत से आए नहीं वेदना आदि के, और इसके पहले कहीं सिद्धांत ग्रंथ का हमने अध्ययन कर लिया। श्रीमद् जी तो यहां तक कहते हैं कि सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन ज्ञानियों के चरण सानिध्य में ही करना
जी,
वरना कुछ बातें हमको ऐसे पकड़ में आ जाएगी कि जो छूटने के लिए बहुत बड़ी विटमना हो जाएगी
जी,
नई विटमना पैदा होगी। इसलिए जैसे ज्ञानी की आत्मकल्याण के कार्य करने की पद्धति है उसको अनुसरण करने का हमारा निश्चय होना चाहिए, हमारा अभिप्राय बन जाना चाहिए, वरना हम गलत पद्धति में अवश्य अवश्य चढ़ेंगे। ये बात जरूर है। ये पत्र सारा मुमुक्षुओं को श्रीमद् जी ने संवाद के मुमुक्षुओं को लिखा है। पत्र के आखिर में वो लिखेंगे कि इस पत्र में हमने गूढ़ शास्त्रार्थ को प्रतिपादन किया है। इसका मतलब क्या कि शास्त्र को जो प्रयोजन है आत्मकल्याण को दिखाने का, इसकी गूढ़ता को हमने यहाँ पर प्रतिपादन कर दी है, इस पत्र में की है। इसलिए हमारी कही हुई इस बात पर बहुत बहुत विचार करना, सिर्फ पढ़ जाना नहीं, ऐसा भी नहीं कहा कि दो पांच बार पढ़ने से आपको मालूम पड़ जाएगा, इस पर अधिक विचार करना, परस्पर चर्चा करना विस्तार से कि ये क्या कहना चाहते हैं और इसकी जो गूढ़ता है उसका जो मर्म है वहां तक पहुंचने का प्रयास करना। ये बात उन्होंने आखिर में सूचना के रूप में लिखा है। ये जो पहला कारण है तो अभिप्राय सुख बुद्धि का अभिप्राय टालने का जो उसमें उद्देश्य है इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए प्राप्त करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की जरूरत पड़ेगी, और वो तभी पता चलेगा कि जब जब हमको सुखेच्छा होगी इसके सामने हमारा पुरुषार्थ चलेगा, पर उस पुरुषार्थ में कभी सफलता कभी विफलता, कभी सफलता कभी विफलता के परिणाम होंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा कि ज्ञानियों ने कितने पुरुषार्थ के बाद ज्ञान दशा को प्राप्त किया है। ज्ञानी भी ज्ञानी को वंदन करते हैं, इसका यही कारण है। कि उसका पुरुषार्थ उन्होंने समझा है। शांत दशा इनकी पहचाने करे कर जोड़ी बनारसी बंधन। बनारसी दास ने बंधन किया है, सम्यक दृष्टि जिसने मिथ्यात का निकंदन किया और जो जिनेश्वर के लघुनंदन के स्थान में आया, उसको नमस्कार किया। क्या कारण है इसके पीछे, वो भी समयसार पढ़ के एक दफे तो चढ़ गए थे सचन में जी। अपने आत्मकथा में लिखे सब बात अर्ध कथा। फिर कोई ज्ञानी पुरुष मिले और सही मार्ग पर आए, ज्ञान दशा को प्राप्त किया, बाद में ये नाटक समयसार लिखा है। तो कहने का आशय वो है कि इस प्रकार की सुख बुद्धि तोड़ने का जो पुरुषार्थ है, यह पुरुषार्थ करने से ही मालूम पड़ेगा कि कितनी कितनी प्रकार की कठिनाई आती है
जी।
और हम कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, क्या क्या होता है ये बाद में मालूम पड़ता है। ये बात कही पहले प्रकार के दोष के, और सिर्फ उसको विचाराधीन नहीं रख करके हमें पुरुषार्थ आधीन इस बात को समझनी है। अब जो दूसरा दोष का प्रकार है तो सत्पुरुष के विषय में है, और ये भी एक बहुत बड़ा प्रकरण है। ये दूसरा प्रकरण हमने निर्धान दर्शन की पगडंडी में लिखा है। यहाँ संक्षेप में श्रीमद जी ने कुछ बातें की हैं, तो ये प्रयोजन भूत मुख्य मुख्य बात कही कही है, जो कल के स्वाध्याय में लेंगे। यहाँ तक करते हैं।